माता जी
इत्युक्तो धरया कृत्वा देहो दमने सन्ततः प्रवेशितो वृत्त्यां लीपलीत विग्रह
इति उक्तो इस प्रकार कहे जाने पर जरया वृद्धावस्था तथा अशक्तता के कारण ग्रस्त देहो इस प्रकार रुग्ण देह धमनी संततः जिसकी धमनियां शरीर भर झलक रही थी रिदम झील में प्रवेशितः प्रविष्ट हुए अश्विभ्याम अश्विनी कुमारों की सहायता से वली पलित विग्रह जिसके शरीर की त्वचा झूल रही थी तथा बाल सफेद थे हरे कृष्ण तो इस नौवे स्कंद के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। ये कहकर अश्विनी कुमारों ने चवन मुनि को पकड़ा जो बड़े वृद्ध थे और जिनके रुग्ण शरीर की चमड़ी झूल रही थी, बाल सफेद थे तथा सारे शरीर में नसें दिखाई पड़ रही थी और वे तीनों उस झील में प्रवेश कर गए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, चवन मुनि इतने वृद्ध थे कि वे अकेले उस झील में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अश्विनी कुमारों ने उनका शरीर पकड़ा और तीनों ही उस झील में प्रवेश कर गए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक की जो पार्श्वभूमि है वो इस प्रकार से है कि वैवस्वत मनु का नाम क्या था, श्रद्धदेव शर्यति वो वैवस्वत मनु यानी जो सूर्यदेव के पुत्र हैं मनु, उनके कई पुत्र हुए। इसके पहले का वर्णन जो आता है वो श्रद्धदेव का आता है, अभी वर्णन आ रहा है शर्यति उनके पुत्र का। तो वो अपने कन्या को लेकर जाते हैं वन में चवन ऋषि को मिलने के लिए, और चवन ऋषि को जब मिलने जाते हैं तो उनकी कन्या वन में फल फूल निकालने जाती है, और जब वन में वो फल फूल निकाल रही होती है तो उसको कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र आती है, जो होता है ना वो अर्थवर्म, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हाँ नहीं अर्थवर्म अलग होता है ना, जुगनू इज दैट ग्लोवर्म, हाँ तो कोई वो किसी के कीड़े के बिल के मुख पर एक चमकती हुई वस्तु नजर आती है, उसको दो वस्तु नजर आती है। तो वो क्या करती है कि हाथ में कांटा लेकर उन दो वस्तुओं को छेद देती है, जैसे वो छेद देती है तो उसमें से खून निकलने लगता है, तो उसको बहुत डर लगता है। और जैसे ही ये घटना होती है जितने भी सैनिक है शर्यति मनु राजा के, वो सबका जो आते हैं वो ब्लॉक हो जाता है और लघु शंका करने का जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, यानी कि अवरोध हो जाता है। वो अभी ना कोई शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं ना मूत्र विसर्जन कर सकते हैं, बहुत भयंकर कष्ट होता है उनको। तो राजा को समझ में आता है कि हमारे ही ग्रुप में से किसी ने कोई भयंकर अपराध किया है। तो ये जब बातें होने लगती है कैसे कैसे हुआ हमारे में से किसी ने अपराध किया, तो प्रामाणिकता से ये कन्या जो है सुकन्या इसका नाम है, जो शरीयती मनु की कन्या है, वो कहती है कि मैंने ये ऐसा किया है अपराध और मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। तो तुरंत राजा जो है समझ जाता है कि अभी च्यवन ऋषि हमको शाप देंगे, तो भाग भाग के च्यवन ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर देना, हमारी कन्या ने अज्ञान में ये सब किया हुआ है। तो च्यवन ऋषि एक ही प्रश्न करते हैं उनको कि आपकी कन्या विवाहित है? तो राजा तुरंत समझ जाता है उनके मन में क्या है, तुरंत कन्या को लेकर आते हैं और उनको विवाह में अर्पण कर देते हैं उनकी पत्नी के रूप में। तो ये विवाह होता है और उसके पश्चात राजा चला जाता है अपने सन्ने को लेकर अपने राज्य में। और बहुत देर बाद अश्विनी कुमार जो देवता है, डॉक्टर वैद्य है, वो आते हैं च्यवन ऋषि को मिलने के लिए। और वो च्यवन ऋषि उनको कहते हैं कि मुझे मेरा यौवन लौटा दो, मुझे जवान होना है, मेरी पत्नी बहुत यौवन अवस्था में है, मैं बहुत ही जर्जर वृद्ध अवस्था में हूँ, तो आप मेरे शरीर को पुनः जवान कर दो, उसके बदले में आपको मैं सोमरस दूंगा। क्योंकि अश्विनी कुमार उनको वो केवल डॉक्टर हैं, इसलिए उनको देवता इंद्र जो है वो सोमरस देता नहीं है, उनको भी इच्छा होती कि सोमरस मिलना चाहिए। तो एक्सचेंज के अंदर वो ठीक है हाँ बोल रहे हैं। और अभी ये जो श्लोक यहाँ पर आ रहा है उसका प्रसंग ऐसा है कि अश्विनी कुमार इस च्यवन मुनि को हाथ पकड़कर उस झील में यानी उस रिधा यानी कि जलाशय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें स्नान करने के पश्चात उनको पुनः यौवन प्राप्त होगा जो उनका खो चुका है। और उस जो झील है, जो जलाशय है, उसका नाम क्या गया है कि सर्व इच्छा पूर्ण करने वाला झील। रूपा जी लिखते हैं कि द लेक ऑफ सक्सेस, ऐसा अनुवाद करते हैं उनका, यानी कि जो जलाशय में प्रवेश करने से सब सिद्धि हो जाती है। इसका अगले पहले वाले श्लोक में इसका वर्णन किया है, सिद्ध विनिर्मितते हृदय सिद्ध विनिर्मितते, सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, ऐसा वो जलाशय था। तो वो जवन ऋषि इतने बुढ़े थे, वली पलित विग्रह, ये मुझे बहुत सुनकर पढ़कर बहुत अजीब लग रहा था, हंसी आ रही थी बहुत। वली पलित विग्रह का मतलब ऐसा है कि ऐसे हाथ ऊपर उठाएंगे ना, एक ऐसा लटक रहा है यहाँ पर, ऐसे ऐसे उनका चमड़ी लटक रहा है, बहुत लंबा होकर ऐसे लटक रहा है पूरा, उसके अंदर कोई स्वेद यानी कि मेद नहीं है, मेद फैट नहीं है हमारे शरीर के अंदर, कैसे सबके अंदर वो फैट होने की वजह से अपनी जगह पे खड़ा है, वो बूढ़ा होने के बाद में लटकने लगता है और ऐसे ऐसे हिलने लगता है, कहीं भी आप कोई भी शरीर उठाओगे तो भी ऐसे हिलने लगता है। मतलब कितने बूढ़े होंगे वो, सोचो आप, इतने बूढ़े थे कि उनको अपने आप में उस कुंड में प्रवेश करने को भी नहीं हो रहा था, उनको दोनों ने उठाकर प्रवेश करवाया। और इत्युक्तो जरया ग्रस्त देहु, बुढ़ापे की वजह से इतना उनका शरीर जो है इतना ग्रस्त हो गया था कि वो रुग्ण हो गए थे, मतलब जैसे कि मरीज ही है एकदम, बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में थे। और धमनी संततः, यानी कि अभी हमारा हाथ देखेंगे तो आपको कोई धमनी नजर नहीं आएगी, कोई वेन नजर नहीं आएगी, लेकिन बुढ़ापे के अंदर क्योंकि चर्म के नीचे का जो मेद है वो नष्ट होता है, सारी धमनियां जो है ऐसे एकदम ऊपर आ जाती है, सब उसको कहते हैं शिरोविन्यास, सब शरीर पर के सब जगह पर वेन्स ही वेन्स दिखाई पड़ती हैं, इतना बीमारी बुढ़ापा का परिणाम होता है। ऐसी अवस्था में वो प्रवेश कर रहे हैं उस कुंड में, ये हमारे आज का श्लोक का प्रसंग है। तो मैं सोच रहा था कि इस पर क्या भाष्य किया जाए तो फनी हमारे हॉस्पिटल में हमने जब पढ़ रहे थे तभी देखा था, 80 साल का एक आदमी जो एडमिट है हॉस्पिटल में, हाँ एकदम मरणासन्न अवस्था में, उसको हार्ट अटैक आ गया है, उसका हाथ भी उससे नहीं उठा जा रहा है, हाँ फिर भी जब एक जवान नर्स उसके पास आती है ट्रीटमेंट देने के लिए तो उसकी आंखें जो है ना ऐसी पूरी फाड़ फाड़ कर उसको देखता है, हाँ इतनी बुरी अवस्था में वो अपनी नजर उस जवान नर्स के चेहरे से हटा नहीं सकता है। तो शरीर बूढ़ा होने पर भी अगर मन में इच्छाएं हैं तो ऐसी बहुत ही खराब अवस्था हो जाती है। खराब क्यों है? क्योंकि तो कितनी घिलौनी अवस्था है। हाँ, अपना यौवन का समय तो समाप्त हो चुका है, जितना भगवान ने हमको दिया समय, चलो एंजॉय द बॉडी, वो समय समाप्त हो चुका है। उसके बाद भी शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मन से इच्छाएं इतनी तीव्रता से प्रकट हो रही है, तो हम समझ सकते हैं ना अगले जन्म में तो बार बार आएगा, या तो कुत्ता बिल्ली, या तो कोई सुअर, या तो कबूतर बनेगा और अपनी वासनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करेगा। हम समझ सकते हैं, किसे भगवान बता रहे हैं, जैसे जो जो इच्छा अतृप्त रहती है उस शरीर को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बहुत भयंकर अवस्था है। अभी वो सबसे पहले जब अपराध होता है उस कन्या से, वो तो अज्ञानता में अपराध हुआ, वो तो बेचारी बालिका है। मतलब ऐसे लिखा है इसमें कि वो जो बालिका थी वो उनके मतलब शी वॉज एलिजिबल टू बिकम हिज ग्रेट ग्रैंड डॉटर, नाती से नाती प्रनाती बनने को भी वो योग्य थी, इतनी उम्र छोटी थी उसकी। लेकिन पहला प्रश्न क्या पूछते हैं, क्या उसका विवाह हुआ है क्या? सबसे पहले पूछते हैं इज शी मैरिड। तो राजा जो है वो अपने ऊपर शाप नहीं आना चाहिए, राज्य के ऊपर, मेरे ऊपर, सैनिकों के ऊपर, कन्या के ऊपर, इसलिए वो तुरंत उसका हाथ उसको पकड़ा देता है। उसके बाद में जैसे कर्दम मुनि थे, कर्दम मुनि का विवाह भी बहुत सुंदर कन्या से हुआ था, देवाहुति से। ऐसी सुंदर थी वो देवाहुति कि आकाश से देवता लोग विमान से देखते हुए गिर पड़ते थे बेहोश होकर, उसकी सुंदरता को देखते। वो छत पर खेलती थी और खास उसको देखने के लिए देवता लोग से विमान पर देवता पुरुष देवता आते थे देखने, और वो गिर जाती थी उसको देखकर। तो उस देवावति से कर्दम मुनि ने विवाह किया, लेकिन कर्दम मुनि जरा सा भी विचलित नहीं उसके सौंदर्य को देखकर, इतने ध्यान में कई वर्ष तक लगे रहे वो। एक जगह कर्दम मुनि का वर्णन आता है, एक जगह च्यवन मुनि का वर्णन आ रहा है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि वो बहुत इरिटेबल थे, बुढ़ापे की वजह से बहुत ही त्रस्त रूप में थे, वो त्रस्त अवस्था में थे, और वो जब चाहे कुछ बोल देते थे। तो लिखा गया कि सुकन्या ने उनको बहुत अच्छी तरह संभाला, सब कुछ सहन करते हुए, उनका जो तारतम्य नहीं था, गुस्सा करते थे, कैसे भी व्यवहार करते थे, एकदम ऐसा होता ना बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, जब वो बहुत त्रस्त हो जाता है, उसका शरीर उसको साथ देता नहीं है, तो उसको बहुत गुस्सा आते रहता है। इसलिए आमतौर पर बुढ़ापे के क्रोध बहुत ज़्यादा रहता है, जो मन में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत गुस्सा आता है उनको। एक जगह पर कर्दम मुनि का उदाहरण है कि उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या किया, भगवान से एकाग्र होकर भजन किया उन्होंने, और उसके बाद में कर्दम मुनि ने देवाहुति को 9 कन्याएं दी, उसके बाद में पुत्र दिया, भगवान का अवतार कपिल मुनि का अवतार। यहां पर देख रहे च्यवन मुनि का इतनी मुनि होने पर भी, इतने ज्ञानी होने पर, सिद्ध होने पर भी ऐसी अवस्था है कि वो कुछ ट्रेड कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं अश्विनी कुमारों से शरीर के भोग के लिए। और अश्विनी कुमार भी कैसे हैं, यहां पर सब लोग यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, देवता बनने के लिए, दे वॉन्ट टू बिकम डेमीगॉड्स। लेकिन डेमीगॉड्स की अवस्था क्या है, वो भी ऐसे ही भोग के लिए लालायित रहते हैं। उनको क्यों नहीं मिल रहा है वो सोमरस, तो क्यों, दे आर प्रोपा सेज दे वर मियर फिजिशियंस लाइक अस। तो वो इंद्र बोलते हैं कि आप तो केवल सामान्य वैद्य हो, इसलिए देवताओं के बीच में आके आप सोमरस नहीं पी सकते हो। सोमरस क्यों पीते हैं, सोमरस इसलिए पीते हैं कि जो इंद्रियां देवता शरीर की इंद्रियां होती है ना, बहुत प्रभावी होती है, उसमें भोग लेना बहुत ज्यादा मुमकिन होता है, हमारे से अधिक। उसको भी आधारों हजारों हजारों गुनाह, हजारों मेनी मेनी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, उसका शक्ति जो है उसको बढ़ाने के लिए सोमरस पीते हैं। यहाँ का जो सोमरस का जो दारू बोलते हैं ना इसको, नशा करने के लिए मदिरा, श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, यहाँ की जो मदिरा होती है वो पीने से हमारी इंद्रियां जितनी भी शक्ति है वो भी और डल हो जाती है, एकदम कमजोर हो जाती है। लेकिन सोमरस ऐसा नहीं है, सोमरस से इंद्रियों की शक्ति जो है वो हजारों गुना बढ़ जाती है। तो जो भोग मिल रहा है मनुष्य शरीर के से भी अधिक शक्तिशाली इंद्रियां मिल रही है, उससे भी समाधान नहीं है उनको, वो सोमरस पीकर उसको और बढ़ाना चाहते हैं। और जो भी भोग वस्तुएं हैं इतनी उच्च श्रेणी की वस्तु वहां पर उपलब्ध है, उसको बहुत अच्छी तरह से भोग करना चाहते हैं और ये इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है, इसलिए मुनि के पास आ रहे हैं, देख रहे हैं इनके पास क्या है, इनके पास शक्ति है, वो दे सकते हैं मुझे सोमरस को, इसलिए वो उनके पास लेने के लिए आए हैं। और ये सोच रहे हैं कि इनको मैं सोमरस दूंगा तो मैं भी कुछ लूंगा उनसे, तो आप डॉक्टर हो, आपके पास शक्ति है। अभी इस दुनिया के डॉक्टर जो उनको शक्ति नहीं है कि बुढ़ापे को जवान बनाया जाए, लेकिन अश्विनी कुमार में शक्ति है, वो दे सकते हैं, इसलिए वो दे रहे हैं कि आप मुझे शरीर दे दो नया, ताकि मैं ये सुंदर कन्या जो है उसका भोग कर सकूं और सबसे पहले उसके लिए मैं आकर्षक बन सकूं। यही प्रवृत्ति हमारे अंदर हम देखते हैं कलयुग के अंदर। हाँ, बूढ़े लोग बाल काला करते हैं, मूंछ भी काला कर देते हैं, हाँ सब मेकअप करते हैं, कुछ फेस पैक करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरी जो आकर्षकता है जवान कन्याओं के लिए वो बनी रहे, मैं ऐसा लगू नहीं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं और जवान लड़कियां मुझे देखना बंद कर देंगी। ये प्रवृत्ति मन की है, इसकी वजह से वो सब बूढ़े होने के बाद भी बाल काला कर रहे हैं और च्यवनप्राश ले रहे हैं और योग कर रहे हैं, क्योंकि जवान बने रहे, भोग की जो शक्ति है वो बनी रहे। और जब भोग की शक्ति कम कम होती जाती है तो परेशान हो जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा है मेरी तरफ से भोग, मैं नहीं कर सकता हूं, ये ऐसा कैसे हो रहा है, दे गेट वेरी अपसेट बिकॉज दे कैनॉट एंजॉय लाइक बिफोर। तो ये भौतिक दुनिया की बहुत दयनीय अवस्था है। भौतिक दुनिया में जितने भी भोग देने के लिए शरीर दिया गया है वो सब भोग लेते लेते कभी भी समाधान नहीं होता है। और ऐसा व्यवस्था बना के रखा है भौतिक दुनिया में कि कितना भी आप भोग लेने का प्रयास करो आपको वो जो चाहिए कभी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, कभी भी नहीं मिलेगा वो आनंद जो आपको चाहिए। ऐसा भूल भुलैया भगवान ने बना के रखा है, मैं बहुत उसके बारे में सोचता हूँ कि क्या बनाया भगवान ने ये दुनिया। हाँ, ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वो इस तरह से बना के रखा है कि इतना आकर्षण लगता है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर है कुछ नहीं, केवल जीव को बार बार दंड देने के लिए, फटका देने के लिए, वैफल्यग्रस्त कर देने के लिए, विफलता के लिए ही बनाया गया है। इसमें मिलता कुछ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उसके लिए पागल है। इतना अजीब व्यवस्था बना के रखा है भगवान ने केवल ये दिखाने के लिए कि मेरे बिना तुम्हारे लिए आनंद नहीं है, इस सत्य को केवल बताने के लिए। लेकिन फिर भी ये जीव जो है, हम जैसे जीव, वो इतने इस वस्तु में लगे हुए हैं कि बार बार ठोकर खाने के बाद भी वो अनुभूति नहीं कर सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके चार स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है कि वो एक बार सुन लिया उसने कुछ बात तो तुरंत समझ जाता है वो, कि आग से हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, तुरंत सुनने से समझ जाता है, उसके आग में आग को हाथ में लगाता है। दूसरे स्तर का व्यक्ति है, वो आग को हाथ लगाता है, इसका एक बार जल जाता है तो दोबारा नहीं लगाता है, फिर समझ जाता है वो, नंबर टू। नंबर थ्री है, वो सोचता है कि एक बार जल गया है शायद दूसरी बार नहीं जलेगा, दूसरी बार लगाता है, वो तीसरा स्तर का है। और चौथा स्तर का आदमी वो है कि वो बार बार हाथ जलने पर भी बार बार आग में हाथ डालते रहता है, उसको समझ में आता ही नहीं है एंड तक। दस बार जलने के बाद सोचता है कि ग्यारहवें बार नहीं जलेगा। तो हम सब लोग ना वो ग्रेड फोर की अवस्था में है कि बार बार लगातार इस दुनिया में ठोकरे खाने के बाद भी हम लोग इंद्रिय भोग के पीछे भागते ही भागते ही भागते ही रहते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि इस प्रकार का इंद्रिय भोग में सफलता नहीं हुई तो अभी थोड़ा चेंज करेंगे ना, उसको जरा अलग तरह से एंजॉय करने का प्रयास करेंगे, चलो ये वस्तु में नहीं मिला तो फिर वो वस्तु में प्रयास करेंगे, अच्छे कपड़े पहनने में नहीं मिला तो शायद मेकअप करके करेंगे, या तो उसको ये खाने से नहीं मिला तो वो खाने से भोग लेने का प्रयास करेंगे, इस तरह से नहीं तो उस तरह से करेंगे। इस तरह से जीवन भर हम ये सोचते रहते कि अरे भोग नहीं मिला अभी तक, लेकिन आगे मिलेगा ना, हमारे पास बहुत दिमाग है, हम लोग उसको यूज करेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे। हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। वो लोग साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, उनका बेसिस क्या है, और आनंद मिले और भोग मिले। चलो मेरी यहां ही बैठकर पंखा का स्पीड कम होना चाहिए, सोच रहे वहां से उठकर वो रेगुलेटर कौन कम करेगा, यहीं से कुछ हाथ में होना चाहिए, तो वो रिसर्च करते हैं उसका। तो ये उसका बेसिस क्या है, एडवांसमेंट नहीं है एक्चुअली, ये फॉल डाउन है, क्योंकि शरीर को उठकर चलकर वो पंखा कम करने की जो काम करने की शक्ति है वो नहीं करना है हमको, वो बैठे बैठे उसको बटन घुमाना है, ट्यूबलाइट भी वहीं बैठ के ऑन करना है, टीवी भी ताकि वहां पर उसको आगे करना है, इधर से रिमोट से होना है सब कुछ। हाँ, युद्ध में पहले जाकर तलवार से आगे युद्ध करते, अभी वो बैठकर बटन दबाते हैं और बॉम्ब छोड़ते हैं यहाँ से। ये एडवांसमेंट नहीं है, ये लेजीनेस है, कलयुग का प्रभाव है। ये सारे संशोधन जो है वो इसी प्रकार से बने हुए हैं, लेजीनेस और इंद्रिय भोग, ये दोनों के ऊपर बने हुए हैं सारे रिसर्च। नाम, इज्जत, पोजीशन, पद, ये सबके ग्रहण के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से चाहे वो इंद्रिय का भोग हो, चाहे वो मन की इच्छाओं को कुछ पूर्ण करने का प्रयास हो, चाहे वो कुछ पद प्राप्त करने की शक्ति हो, चाहे अहंकार को बनाए रखने की योजना हो, हर योजना को ठोकर ही खानी पड़ती है। रिपीटेडली एवरीबडी जस्ट गेट स्मैश्ड, बार बार उनको केवल धक्का ही खाना पड़ता है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती है कि इसमें कुछ नहीं है। शरीर अभी कुछ कुछ वस्तुओं में भोग लेने की शक्ति खत्म हो गई, अभी और मीठा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाता है। शरीर बता रहा है कि बंद करो अभी उसको, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है उसको। वो बार बार कुछ गोली लेके, कुछ इंजेक्शन लेके, योग करके, कुछ प्राणायाम करके सोचता है कि मैं मीठा खाते रहूं, लेकिन शरीर कह रहा है बंद करो अभी उसको, फिर भी हम मानते नहीं है। सत्य जीवन का इतना प्रभावी है और इतना दर्शनीय है, इतना दिखाई पड़ रहा है कि अगर आपके पास थोड़ी सी बुद्धि होगी तो समझ जाएंगे कि ये नहीं करना है अभी इसके आगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको इंटीग्रेशन आ गया है। जैसे कि हमने अगर बिजली के सॉकेट को हाथ लगाया और शॉक लग गया तो क्या बता रहा है, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, यू गेट शॉक, है ना। तो हम बार बार जाके उसको लगा रहे, तो मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बता रहा है हमको। बता रहा है कि मुझे मत छुओ, मैं छूने की वस्तु नहीं हूं। उस तरह से शरीर बता रहा है कि अभी आपका समय समाप्त हो रहा है, ये करने का समय समाप्त हो रहा है, अभी आपका समय जो है अधिक समय भगवान की भक्ति में, भजन में और विरक्ति में लगना चाहिए। फिर भी हम संदेश जो है, जो प्रकृति की तरफ से हमको मिल रहा है, उसको हम समझने का प्रयास नहीं करते। तो चवन मुनि की जो वली पलित विग्रह, हाँ, उनकी जो चमड़ी जो लटक रही है वो बता रही है उनको कि अभी समय खत्म हो गया आपका, फिर भी भोग करने की इच्छा है। सोच रहे हैं ऐसा एकदम ड्रास्टिक, यानी कि बहुत भयंकर योजना सोच रहे हैं कि बुरा शरीर को नष्ट करके जवान शरीर प्राप्त किया जाए। तो देख रहे हैं, अरे अश्विनी कुमार आ रहे हैं, चलो उनको पूछा जाए तुरंत। और जानते हैं वो भी इसी भाव में है, उनको भी कुछ चाहिए, तो वो हम देंगे और वो व्यवहार करेंगे और शरीर लेंगे। और इतनी बूढ़ी अवस्था में जब पूरे जीवन को भगवान के भजन में लगाना है, वो छोड़कर सोच रहे हैं कि जवान बनकर अभी और कुछ साल उसको भोग लिया जाए, तो एकदम जवान बन जाते हैं वो, तीनों एकदम एक समान बन जाते हैं। तब सुकन्या जो है वो एकदम भ्रमित हो जाती है, क्योंकि तीनों एकदम समान दिख रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है पति कौन है उसके अंदर। तो अश्विनी कुमार उनको प्रार्थना करती है वो, मुझे मेरे पति को बताओ कौन पति है मेरे इसके अंदर। तो उसकी पतिव्रता धर्म को देखकर वो तुरंत बता देते कि ये आपके पति, और फिर वो उनके साथ चले जाते हैं। तो सुकन्या का चरित्र एक तरफ है, सुकन्या ये नहीं सोच रही है कि क्या मेरा दुर्भाग्य है, इतनी सुंदर कन्या, मैं जवान हूं, मुझे कोई जवान राजपुत्र मिलना चाहिए था, मैंने कहां से उस जाके उसको लगा दिया कांटा और फंस गई उसके अंदर, ये नहीं सोच रही हूं। सुकन्या का चरित्र जो है वो श्रेष्ठ चरित्र है, पतिव्रता का चरित्र है वो। जो घटना उसके जीवन में अनजाने में हो गई, उसके फल को वो बिना कुछ कहे हुए स्वीकार कर रही है, इज नॉट ट्रू। उन्होंने पिताजी जाकर रोया नहीं, पिताजी मैंने इतना बड़ा गलती क्या किया, तो क्या हुआ आप मुझे ऐसे उसके गले के भी क्यों बांध रहे हो, मैं तो जवान हूं, तो बुढ़े हैं आप, बाकी कुछ उपाय सोचो ना, मुझे ही विवाह में देने का उपाय कुछ सोच रहे हो, अगर समस्या हो गई तो उसका कुछ अलग उपाय करो, यही उपाय क्यों कर रहे हो मुझे उसको देने के लिए, मेरा जीवन तो आप बर्बाद कर रहे हो, एक छोटी सी गलती मैंने की अनजाने में, उसके फल स्वरूप मेरे पूरे जीवन भर इस बुढ़े के हाथ में मुझे आप पति के रूप में बांध रहे हो। ऐसा उसने कुछ स्ट्रगल नहीं किया उसके साथ, आने वाले स्थिति को स्वीकार किया उसने, और अपने किए हुए जो कर्म था अनजाने में किया था। जीवन का कैसा होता है, चाहे जाने जानकर किया हो या अनजाने में किया हो, उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। बचपन में अगर आप 2 साल की उम्र में दीवार पर चढ़ाने हुए चिटियों की लाइन को एक एक करके सुई से मारा होगा ना बचपन में खेल खेल में, तो भी उसका फल भोगना पड़ता है, कोई माफी नहीं उसके लिए। कर्म का जो रहस्य है वो ऐसा है कि कोई उसका था नहीं लगा सकता है। रूपा जी कहते हैं कि ये कर्म को जानने के चक्कर मत पड़ो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये छोटी सी कन्या होने पर भी अनजाने में किए हुए कर्म का फल शांति से स्वीकार करने को तैयार है और पति की सेवा कर रही है। ऐसे लिखा है प्रभुपाद जी ने कि सुकन्या का चरित्र इतना श्रेष्ठ है कि उसके पति बुढ़े थे, बहुत इरिटेबल थे, क्रोधी थे, विक्षिप्त स्वभाव के थे, फिर भी सुकन्या ने बहुत ही शांति से उनसे जमा कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया पूरी तरह से। जो कोई भी जवान औरत के स्वभाव से उम्मीद नहीं, हमें अपेक्षा नहीं कर सकते कैसे युवा अवस्था में हुए कन्या कर सकती है, लेकिन सुकन्या का चरित्र इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि सुकन्या इतनी विपरीत अवस्था में होने पर भी अपने पति की सेवा कर रही है, इसलिए उसका चरित्र जो है भागवत में आ रहा है। सुकन्या का चरित्र आया है एक ही कारण से, पातिव्रत्य के कारण से, कि पातिव्रत्य धर्म जो है वो इतना श्रेष्ठ है कि केवल पतिव्रता कन्या कोई फ्री होने से, अगर वो भक्ति भी नहीं है केवल पतिव्रता है तो भी वो ब्रह्मलोक जा सकती है। जैसे कोई पुरुष है अगर कोई केवल ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करता है स्ट्रिक्टली तो ब्रह्मलोक में प्रवेश कर सकता है वो, और आगे ब्रह्मा जी की कृपा से भगवान के धाम में भी जा सकता है अगर वो आगे ब्रह्मा जी की कृपा को ग्रहण करता है। तो ऐसी ही पतिव्रत धर्म जो है बहुत वंदनीय है, वैष्णव समाज में पतिव्रत धर्म जो है बहुत वंदनीय है। आजकल के जमाने में पतिव्रत्य के नाम सुनकर ही लोगों को हंसी आती है, ऐसा पतिव्रत्य कौन, ऐसा पति है राम जैसा जिसके लिए हम सीता बने, है कोई ऐसा? हर कोई व्यक्ति पत्नी सीता जैसी बने ऐसे चाहता है, लेकिन खुद राम जैसा है क्या? इस आर्गुमेंट के ऊपर लड़कियां भी सब लोगों को देख रही हैं, पत्नियां भी सब पति और आदमियों को देख रहे हैं, सब पति भी सब कन्याओं को देख रहे हैं, कितना समाज भ्रष्ट हो गया है। लेकिन फिर भी समाज कितना भी भ्रष्ट हो लेकिन पातिव्रत्य धर्म का जो सत्य है वो मिट नहीं सकता है। आज भी अगर कोई पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसको वही लाभ मिलेगा जो सत्यलोक में मिलता था, क्योंकि ये चिरंतन सत्य है। इस ये काल के प्रभाव से कम होने वाले या कम पावरफुल होने वाले सत्य नहीं है, ये वो सत्य है जो चिरकालीन सत्य है। कोई भी युग में, कोई भी समय में, कितने भी पतित अवस्था में, पतित युग में, पतित समय पर ये सत्य ही रहने वाले सत्य हैं। और कलयुग केवल सत्य के एक स्तंभ पर आधारित है, चल रहा है अभी भी, क्योंकि ये सत्य जो है अबाधित है। तो हम लोगों को हमारे जीवन में इन सत्यों की खोज करनी चाहिए कि ऐसे कौन से सत्य हैं जो मिट नहीं सकते हैं और हमेशा जागरूक रहते हैं, हमेशा एप्लीकेबल रहते हैं। उनमें से एक सत्य यह है कि सुकन्या अपने व्यवहार से दिखा रही है कि चाहे जो भी हो, जो स्थितियां जीवन में आ रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके साथ जूझना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम अगर जाने अनजाने में गलतियां भी करते हैं, कुछ भगवान का हेतु है उसके अंदर, इसलिए वो हो रहा है, नहीं तो वो नहीं हो सकता है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। हमारे लिए उसमें क्या मैसेज है वो हमको देखना है कि अगर भगवान की इच्छा से ऐसे हो रहा है जो हमारे मन के लिए अनुकूल नहीं है, हमारा मन के विपरीत है, लेकिन भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसका मतलब हमारे लिए उसमें कुछ श्रेष्ठ वस्तु गर्भित है उसके अंदर, और कुछ मैसेज है हमारे लिए, संदेश है हमारे लिए कुछ। वो जान लेना ही भक्ति का जीवन है। गुरु के आदेश, गुरु के सत्संग से, गुरु के संग से और गुरु के सान्निध्य से हम यह रहस्य को समझ सकते हैं। इसलिए सुकन्या का चरित्र यहां पर आ रहा है, इतना श्रेष्ठ चरित्र है। कई पतिव्रताओं को मैंने विचार किया इसके बारे में, 15 मिनट बाकी है, कुछ बताऊंगा आपको कि विश्वामित्र मुनि एक बार ये पतिव्रताओं का जो महात्म्य है वो समझाने के लिए बता रहा हूं। तो सुकन्या की तरह है, सुकन्या के जैसे बहुत सारी माताएं श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का पालन करने में वर्णन आता है उनका। तो विश्वामित्र मुनि एक बार भजन करने बैठे थे ध्यान करते हुए, तो एक कौवा जो है उनके सर पर विष्ठा डाल लेता है, उड़ रहा है, तो जब वो विष्ठा डालता है तो उनके सर पे आकर गिरता है। इतना क्रोध आता है उनको, वो ऐसा मंत्र बोलते हैं कि तुरंत वो भस्म हो जाता है, राख बनकर नीचे गिर जाता है। और फिर कुछ देर बाद में वो भिक्षा मांगने के लिए किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं समय होने पर। तो वो जो पत्नी है वो अपने वृद्ध पति की सेवा कर रही है और दरवाजे पे विश्वामित्र मुनि खटखटा रहे हैं, भवती भिक्षांदेही भवती भिक्षांदेही, और वो नहीं आ रही है क्योंकि पति की सेवा में है। तो उनको क्रोध आता है और वही मंत्र उच्चारण करते हैं जो उसने कौवे के लिए किया है, लेकिन उस मंत्र का कोई परिणाम नहीं होता है। और अंदर से ही ये माता बोलती है कि मैं पति की सेवा कर रही हूं, मैं आ रही हूं आपको भिक्षा देने के लिए, थोड़ी देर रुको और ये मत समझना कि मैं वो कौवा हूं। तब वो समझ जाते हैं, अरे ये पतिव्रता स्त्री है, उस पर मेरा शाप भी काम नहीं कर रहा है। तो विश्वामित्र मुनि जैसे मुनि का शाप भी एक पतिव्रता स्त्री पर कुछ असर नहीं कर रहा है, यही उसकी पावर है। दूसरी बात है कि रेणुका जी जो जमदग्नि की पत्नी है ना, उसके पातिव्रत धर्म का ऐसा वर्णन आता है कि वो साड़ी में पानी भरकर लाती थी, पतिव्रता धर्म के शक्ति के वजह से। साड़ी में पानी लगे तो क्या होगा, सब निकल जाएगा ना पानी, साड़ी में छेद होते हैं ना, सब इतने सारे मटके में ला सकते हैं, लेकिन वो साड़ी में पानी भरकर लाती थी। लेकिन एक बार वो जब पानी लाने गई थी तो एक गंधर्व जो है अपनी अनेक स्त्रियों के साथ में उसी जलाशय में स्नान करने आते हैं, तो उनको देखकर वो एक क्षण के लिए मोहित हो जाती है, अरे कितना अच्छा होता कि मुझे इस गंधर्व का संग प्राप्त होता। तो उस दिन जब पानी भरने जाती है तो सब पानी गल जाता है। तो पातिव्रत धर्म जो है वो शरीर का धर्म नहीं है, वो आत्मा का धर्म है और बहुत सूक्ष्म है, वो मन की इच्छाओं के ऊपर डिपेंड रहता है। जब मन की कोई भी इच्छा पति की इच्छा के अलग नहीं है और पति की इच्छा के साथ पत्नी इच्छा से समर्पित है, तभी पातिव्रत धर्म होता है। तो इतनी श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का फल का अनुभव करने के बाद भी एक क्षण के मन विचलित होने से रेणुका का जो शक्ति है वो नष्ट हो जाता है। तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल हो गया कि पतिव्रता थी वो, लेकिन एक क्षण के लिए उसका मन भ्रष्ट हो गया, शक्ति खत्म हो गई, और तुरंत जमदग्नि ने देख लिया उसको कि हाँ ये भ्रष्ट हो गई है। तो उसने कहा अपने पुत्र को इसको मार डालो, तो सब पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने बड़ी सोच समझ के इसको हाँ कर दिया। उन्होंने विचार कर लिया कि मैं इनकी आज्ञा पालन करूंगा, फिर प्रसन्न हो जाएंगे, फिर कहेंगे वर मांगो, तब मैं मांगूंगा कि मेरी माँ को जीवित करो। तो वो पत्नी अपनी माता को मार देते हैं, पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, पूछते वर मांगो, तो कहते हैं मेरी माता को जीवित करो, फिर जीवित कर देते हैं। ये कथा है। तीसरी कथा आती है अनसुया माता जी की, जो अत्रि मुनि की पत्नी थी। वो इतनी श्रेष्ठ अनसुया पतिव्रता थी, इतनी श्रेष्ठ थी कि देवताओं के लोक में भी उसका नाम हो गया था। यहां तक कि उसकी पतिव्रता धर्म का इतना प्रचार था, इतना नाम था कि सीता देवी जो भी परम सती हैं तीन महासतियों में से, वो सीता देवी भी अपने वनवास में क्या कर रही है, अनसुया के पास बैठकर उपदेश ले रही है कि पतिव्रता धर्म कैसे पालन करना चाहिए, पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, पति को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, पति की कृपा हमारे ऊपर कैसे हमेशा बनी रखनी चाहिए। इसके लिए वो वनवास में स्वयं महासती होने पर भी अनसुया के चरणों पर बैठी हुई है और उनका उपदेश सुन रही है। और अनसुया भी सीता जी का भाव देखकर, देखो दो महासतियां महापतिव्रता स्त्रियां जो है उनका वार्तालाप हो रहा है, उनको वो बहुत कीमती अलंकार देती है जो वनवास में नहीं पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी अनसुया देवी कहती है कि अपने पतिव्रता धर्म के लिए ये अलंकार पहने रखो। इसलिए उसके आगे वनवास में सीता जी ने वो सारे अलंकार पहन के रखे हैं पूरे वनवास में भी। वो अनसुया देवी के ऊपर देवताओं की स्त्रियां जो है वो ईर्ष्या करने लगती है, जब देवता स्वयं कहते हैं, ब्रह्मा शिव जी और विष्णु भगवान भी कहते हैं कि अनसुया श्रेष्ठ है पतिव्रता धर्म में, तो उनको ईर्ष्या होती है, तो वो कहते हैं हमको परीक्षा लेनी है उनको, बोले कोई बात नहीं हम जाएंगे परीक्षा लेंगे। और विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी जाते हैं ऋषि बनकर भिक्षा मांगने के लिए, मतलब भगवती भिक्षा दे, तो दे देती है भिक्षा उनको। तो नहीं नहीं हम आपकी भिक्षा ऐसे लेंगे कि आप निर्वस्त्र होकर हमको भोजन खिलाएंगे तभी आपकी भिक्षा लेंगे हम। तो पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री को एक दिव्य बुद्धि भी होती है, केवल पातिव्रत्य होने से दिव्य बुद्धि स्त्री को प्राप्त होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिवाइन इंटेलिजेंस। जैसे ब्रह्मचारी व्यक्ति को जब ब्रह्मचर्य से ही दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, उस बुद्धि से भी वो भगवान को समझने की प्रयास करता है। ब्रह्मचर्य अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक भौतिक क्रिया है, लेकिन ब्रह्मचर्य को जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत कीमती वस्तु हो जाती है। हर एक वस्तु का वैल्यू तब है जब वो भगवान के लिए या भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तब वो वैल्यूएबल है। तो पतिव्रता स्त्री भी पतिव्रत्य क्यों करती है, पतिव्रत्यता करने से उसको जो दिव्य बुद्धि अनुभूति प्राप्त हो जाती है उसकी आधार से उसकी वजह से वो भगवान को अनुभूति करने का प्रयास करती है। तो समझ जाती है कि ये जो है ये उनकी कुछ कपट है इसके अंदर, इसलिए वो जाती है अपने पति के कमंडल को लेके आती है, उसके जल से इनको छिड़कती है। तीनों जो है वो नंगे बालक हो जाते हैं छोटे से, फिर वो निर्वस्त्र होकर उनको भोजन कराती है। इतनी शक्ति है उसके अंदर। देखो केवल पति की एकाग्रता से सेवा करने से उसके हाथ से निकला हुआ जल जो है पति कमंडल का, उससे वो देवता, महान देवता जो पूरी सृष्टि को, पूरे 14 भुवन को नियंत्रित कर रहे हैं, उनको एक छोटे से नंगे बालक बनना पड़ता है। और उनको वैसे रखती वो, उनके घर में रहते वो बालक, बाद में जाते ही नहीं वो। उनकी पत्नियां ढूंढ के आती, हमारे पति कहां गए, इसके घर में आते हैं। अनुसुईया तो टेस्ट करने आए थे वो कसौटी लेने के लिए, तो वो कहती है तुम्हारे पति वो देखो वहां खेल रहे हैं तीन बच्चे। तो फिर वो फिर उनको दोबारा जल छिड़कती है और फिर अपना रूप धारण कराती है उनको। लेकिन उसके पतिव्रता धर्म से ये तीनों देवता इतने प्रभावित हो जाते हैं, जैसे दोबारा आपके पुत्र के रूप में हमको आना है, आपके इस क्रिया से, इस उदाहरण से हम इतने प्रभावित हो गए कि आपका पुत्र बनना चाहते हैं। तो दत्तात्रेय जी उनके गर्भ में आए, ऐसे अनसुईया जी। चलो प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के किसी भी आप फोलियो में ढूंढेंगे, कहीं भी ढूंढेंगे, ये सुकन्या के ऊपर उनका प्रवचन नहीं है, लेकिन एक जगह पर उनका जो कन्वर्सेशन है जो अपने शिष्यों के साथ कर रहे हैं उसमें वो उल्लेख करते हैं कि सुकन्या जी का जो चरित्र है पतिव्रता धर्म का, वो एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे होनी चाहिए, जैसे एक पतिव्रता स्त्री का अपने पति के प्रति श्रद्धा होती है, वैसे ही एक शिष्य के अपने गुरु के प्रति होनी चाहिए। तो उन्होंने सुकन्या का जो पतिव्रत धर्म है उसकी तुलना एक शिष्य के गुरु के प्रति जो भावना होनी चाहिए उसके लिए किया उन्होंने। तो ये जो पतिव्रता धर्म जो है यही भावना शिष्य को अपने गुरु के प्रति होना चाहिए, तब जाकर उसका जीवन जो है सफल हो जाता है। क्योंकि एक शिष्य के लिए अपने पति, जैसे स्त्री के लिए पति है वैसे ही एक शिष्य के लिए गुरु है। वैसे देखा जाए तो हम सब लोग स्त्री हैं मूल रूप में, क्योंकि हम एक ही पुरुष हैं वह श्री कृष्ण, और सभी जीव हैं वो भोग्य वस्तु हैं, और हर भोग्य वस्तु जो है वो स्त्री होती है। तो हम सब लोग भगवान के भोग्य हैं, भगवान के भोग के लिए हैं, इसलिए हम लोग भी स्त्री हैं। इसलिए वो बरसाना में आप जाएंगे तो सब लोग सखी भाव में रहने का प्रयास करते हैं। बरसाने का वो जो रहस्य है वही सखी भाव है, वो सब लोग कोशिश करते हैं कि भगवान के लिए भोग्य वस्तु बने। इसका मतलब आर्टिफिशियली किसी पुरुष को स्त्री का कपड़ा नहीं पहनना है, इट्स नॉट दैट, इट डजंट मीन दैट। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने आप को पुरुष समझते हैं और भोग लेने वाले समझते हैं, और भोग हमारे लिए बनाया गया समझते हैं, उस भावना को छोड़ देना है कि आई एम द एंजॉयर, अहम भोक्ता जो प्रवृत्ति हमारी है उसको छोड़ देना है, और मैं केवल भोग्य हूं और भगवान भोक्ता है। ईश्वरो हम ईश्वरो, मतलब परम भगवान जो है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो है, वो मैं नहीं हूं। अभी सोच रहे कि वो मैं हूं, मुझे बनना है वो प्रयास करके, तो हमको सोचना है कि हम वो नहीं है, भगवान भोक्ता है और मैं भोग्य हूं, उसको कहते हैं सखी भाव। वो मन की और आत्मा की भावना जो है उस पर वो निर्भर करता है। अगला उदाहरण है दुर्गा देवी का। हाँ, दुर्गा देवी अन्नपूर्णा है। हाँ, सब सब शक्तियां उनके पास में है, भगवान की एक भय एक दो प्रधान शक्ति में से एक शक्ति है वो, और उनके पति है शिव जी महाराज, और ये तो अन्नपूर्णा यानी कि पूरी धन की संपत्ति उनके पास में, सबका स्रोत है वो, लेकिन उनके पत्नी पति जो है वो एकदम विरक्त अवस्था में पेड़ के नीचे भजन करते रहते हैं। तो गर्ग मुनि एक बार आते हैं उनके पास और कहते हैं कि अरे आपका विवाह हो चुका है, कम से कम घर तो होना चाहिए आपका। तो गर्ग मुनि के कहने से शिवजी और पार्वती जी एक सोने का शहर बना देते हैं, अ सिटी ऑफ गोल्ड एज देयर हाउस, और उसमें गृह प्रवेश की योजना बना देते हैं। और गृह प्रवेश की योजना बनाने के लिए फिर वो सोचते हैं कि सभी ऋषियों को बुलाना चाहिए, सभी मुनियों को बुलाना चाहिए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, तो हमारा गृहस्थी धर्म सफल हो जाएगा। इसलिए सभी ऋषियों को, सप्त ऋषियों को, अनंत ऋषियों को बुलाते हैं और भोजन का इंतजाम करते हैं। तो वो उसमें से अधिक सारा भोजन जो है गर्ग मुनि खा लेते हैं, पूरा सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं गर्ग मुनि जी। और कहते हैं गृह प्रवेश जब करते हैं, साधुओं को बुलाते हैं, तो दक्षिणा भी देनी चाहिए उनको, तो दक्षिणा के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ले लिया उन्होंने, अभी खाली एक ही वस्तु बची है, वो है वो सोने का शहर वाला घर। तो गर्ग मुनि को वो शहर दान में दे देते हैं और फिर जाके पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और पार्वती जी भी उनके साथ साथ पीछे पीछे बढ़कर पेड़ के नीचे आके बैठ जाते। कितनी महान भावना है पार्वती की, जो भी है जैसे भी पति है वैसे साथ में मैं हूं, पति सोने के घर वाले थे तो मैं उनके साथ में हूं, पति पेड़ के नीचे है तो मैं पेड़ के नीचे। पार्वती देवी की ये दूसरी महासती है, एक सीता देवी है, एक लक्ष्मी देवी है और एक पार्वती देवी है। लास्ट सती का वर्णन मैं आपको जरूर करना चाहूंगा, जो वो अभी अभी केवल 40-50 साल के पहले की घटना है। ब्रज में एक गांव है जिसका नाम है पलसों, आपने सुना होगा पलसों, सी पलसों, मतलब उसका एक श्लोक है भागवत में, वो उसका अर्थ यह है कि मैं शीघ्र ही एक दिन बाद आऊंगा, ऐसे भगवान गोपियों को कहते हैं। उसकी कथा छोटी सी ऐसी है कि जब अक्रूर उनको लेके जा रहे हैं, अक्रूर गमन मार्ग से नंदगांव से, तो वो जा रहे हैं तो उधर बीच में गांव आता है ब्रजवारी, हाँ ब्रजवारी या वज्रवारी आप कह सकते हैं, बिजवारी आज कहते हैं उसको। उसकी कथा यह है कि वो सब गोपियां भाग रहे हैं उनके पीछे, औरत आगे आगे जा रहा है, गोपियां भाग रही है, कुछ गोपियां आगे जा रही है, बीच में कोई पीछे भाग रही है। तो भगवान क्या करते हैं, वज्राघात करते हैं आकाश से जोरदार, और गोपियां सब बेहोश हो जाती हैं। फिर वो बेहोश होते ही ये रथ लेके आगे भागते हैं, जो आगे भागते हैं तो कुछ देर बाद गोपियां होश में आती हैं, पूछते हैं कहां गए कहां गए कृष्ण भगवान कहां गए, तो इतनी जोर से भागती है कि उनको एक गांव में पकड़ लेती है। मतलब रथ से भी कितने अधिक गति से भागी होगी ना वो, ये रथ से भाग रहे हैं और कई पहले निकल चुके हैं, ये बाद में होश में आ रही है और बाद में भाग रही है, फिर भी उनको पकड़ लेते हैं, मतलब कितनी गति से भागती होंगी वो। तो उस जगह पर पकड़ती है और वो फिर दोबारा उनको पूछती है कहां जा रहे हो आप, तो बोले कोई बात नहीं मैं शीघ्र ही एक दिन बाद आऊंगा, मतलब परसों आ जाऊंगा। तो उस गांव का नाम पड़ा पलसो, सी पलसो। तो एक गांव में एक स्त्री थी, उसका नाम था हरिदेवी। वो हरिदेवी का पति का देहांत हो जाता है, केवल 50 साल पहले की बात है। यहां तक कि जो हमारे पहचान के ब्रजवासी हैं उन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसलिए हमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमको उन पर विश्वास है। तो जब ये पति का देहांत हो गया तो शरीर जलाने का समय आया, तो उसने कहा कि इनका शरीर जलेगा ही नहीं, जब तक मैं सती नहीं जाऊंगी इनके साथ में तब तक इनका शरीर जलेगा नहीं। इतनी श्रद्धा थी अपने पति पर उनको कि उनके बिना उसको रहने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन समय तो आजकल का था, जो 1910 में ही राजा राम मोहन राय ने सती का बंदी कायदा लाके सब बंद कर दिया था। तो ये कह रही आप कोशिश करो, उनको कुछ नहीं होगा, मैं साथ में जाऊंगी तभी चलेगा। बोले नहीं, कायदे से आपको अधिकार नहीं है जाने का। तो ये पुलिस तक पहुंच जाती है बात, और पुलिस फिर अपनी हिरासत में शरीर को जलाने का प्रयास करते हैं, शरीर उनका जलता ही नहीं है, हर तरफ से प्रयास करते हैं, पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ये बात प्रसिद्ध हो जाती है कि शरीर नहीं जल रहा है, शरीर नहीं जल रहा है। आखिर में वो पुलिस का और उसका डिस्कशन होता है, वो कहती है कि मुझे उनके साथ में जलना ही होगा तभी शरीर जलेगा, और आखिर वो मान जाते हैं जब वो सबके सामने भगवान की राधा रानी की महाप्रसादी मालाएं पहन के प्रवेश करती है तब वो शरीर जलता है, और उस समय ये हकीकत है, सत्य बात है, इस समय आकाश से पुष्प वर्षा होती है उसके ऊपर। और आज भी आप पलसो गांव जाएंगे, सती हरिदेवी के नाम से बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है, और आज भी सती का मेला वहां लगता है हर साल उस दिन पे जिस दिन में वो सती गई थी। तो ये मैंने कथा आपको बताई कि इस प्रकार की पतिव्रता आज भी है, और आज भी मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे अरे हम तो कलयुग में हैं, क्या ऐसा अच्छी कथा बताई आपने रेणुका की, वो अनुसुईया की और सब दुर्गा देवी की, अच्छी कथा है, सुनने को अच्छी लगती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है आज के लिए। पतिव्रता धर्म जो है वो भावना की बात है, और अगर वो भावना हमारे पास है तो शरीर से शायद हम उस प्रकार का कर्म नहीं कर सकते जैसे पार्वती ने किया था या अनुसुईया ने किया था। हो सकता है हमारे हाथ के जल से कोई व्यक्ति बालक नहीं बनता होगा, पॉसिबल, लेकिन अगर भावना वैसी हमारे अंदर है तो भगवान की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग हो या सत्ययुग हो, भगवान तो वही है ना, भगवान पर तो कलयुग का प्रभाव नहीं होता है, भगवान तो नहीं बदलते कलयुग के प्रभाव से, वो तो कालातीत है, स्वयं काल है, वो स्वयं काल के स्वामी है वो। तो हमको इस बात पर विश्वास है और इस बात में आशा है कि भगवान वैसे ही रहते हैं, और भगवान के अंश हम हैं, इसलिए हमको भी वैसे रहने का मुमकिन है, वैसे हम रह सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि अरे पिछले युगों में तो कुछ यज्ञ करने से देवता लोग स्वयं आके आहुति स्वीकार करते थे, आज तो कोई देवता भी नहीं आते हैं, और आज हमारे अंदर कोई अच्छे गुण भी नहीं है, ना स्मृति हमारी अच्छी है, ना हमारे अंदर कोई अच्छे गुण है, हम झगड़ा करते रहते हैं, हमारे अंदर कोई भी अच्छे काम करने की प्रवृत्ति नहीं है, हम बहुत आलसी बन चुके हैं, हमारी आयु छोटी है, हमारी स्मृति नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल एकदम होपलेस कंडीशन है हमारा, लेकिन फिर भी सत्य यह है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान वैसे ही है, और प्रक्रिया जो हमको दे दी गई है वो श्रेष्ठ कालातीत प्रक्रिया है। यहां तक कि भगवान का नाम सत्ययुग में भी प्रधान था, त्रेता में भी प्रधान था। आप देखते हैं ना त्रेतायुग में रामचंद्र की उस समय पर हनुमान जी ने पत्थर पर राम लिखा था ना, भगवान का नाम लिखा था, और वो तैर गया ना पैर पत्थर। मतलब भगवान का नाम का प्रभाव हर युग में है, केवल कलयुग में वो एक ही हमको दिया गया है, बाकी सब बाजू में रखे। इसका मतलब ये चिरंतन प्रोसेस है सब, ये जो प्रक्रियाएं हैं चिरंतन है, हमको श्रद्धा होनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे भगवान का नाम चिरंतन है, हम चिरंतन है, भगवान चिरंतन है, काल के रूप में प्रभावित होने वाले नहीं है, उसी तरह से पतिव्रता धर्म भी चिरंतन है, और आज भी अगर कोई उस भावना को अपनाता है तो उसी फल को प्राप्त कर लेता है और प्राप्त कर सकता है। ये हमको श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे शास्त्र जो है ये भी चिरंतन है, इस पर भी काल का प्रभाव नहीं। कोई कह नहीं सकता है कि अरे अभी तो भगवत गीता और भागवतम इज आउटडेटेड, अभी तो कलयुग में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक था उस समय द्वापर में जब युद्ध हो रहा था, हो गया ठीक है, अभी तो कोई थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको, नहीं आज भी वो एप्लीकेबल है। आज भी हम उसको अगर श्रद्धा से अपनाएंगे तो वही फल पाएंगे जो अर्जुन ने उस समय पाया था, वही फल पाएंगे जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से ये सुनकर प्राप्त किया था उस समय जब ही द्वापर का अंत हो रहा था। आज भी एप्लीकेबल है। श्रद्धा सबसे बड़ी वस्तु है, श्रद्धा नहीं है तो सब कुछ झूठ है। क्या है बोले क्या भगवान है, सब तो पत्थर से बने हुए, लेकिन नहीं श्रद्धा है तो वो प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हमारे सामने विराजमान है, लीला कर रहे हैं, सारा वृंदावन यहां प्रकट है अगर श्रद्धा है तो। श्रद्धा नहीं है तो केवल संगमरमर की मूर्ति है, फूल लगाए हुए ऐसे ही खिलौने के लिए। श्रद्धा जीवन में हर वस्तु को बदल देती है, वो भी दिव्य स्तर पर उसको रूपांतर कर देती है, नॉट ओनली ट्रांसफर, दिव्य स्तर पर उसका रूपांतर कर देती है। और श्रद्धा ही, श्रद्धा के बल से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, इतनी श्रद्धा में शक्ति है, और ही हमारे भक्ति जीवन का मूल आधार है, और उस श्रद्धा से ही हमारा भक्ति जीवन बनता है, अगर वो नहीं है तो सब कुछ बेसलेस है, कोई नींव ही नष्ट हो जाती है। तो उसी श्रद्धा से हमको ये भागवत पढ़ना चाहिए, भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए, उसी श्रद्धा से हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उसी श्रद्धा से जो भी भगवान के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स हैं, मूल्य हैं, उन पर भी चिंतन करना चाहिए और उस जीवन में अपनाना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है किसी का? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्या प्रश्न है उनका? देखो अपने आप का आपका प्रश्न है कि क्या भगवान के लिए कुछ इच्छा कर रहे हैं भगवान की सेवा में, तो ठीक है, ऐसा पूछ रहे ना आप. लेकिन आपको पक्का मालूम होना चाहिए कि भगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं है. गड़बड़ क्या होता है, भगवान के नाम से अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं, अपना मन में एजेंडा कुछ है और भगवान का उसको नाम देके अच्छा कवर करके पैकिंग करके प्रस्तुत करते हैं उसको. वो हमको देखना है कि क्या वो सही रूप में भगवान के लिए ही है क्या, तब आप कर सकते हो. अगर उसके अंदर हमारा भी कुछ अंश है तो फिर वो जितना अपना अंश है उसका परिणाम अलग मिलेगा, जितना अंश भगवान की सेवा के लिए था उसका उनका परिणाम होगा. ये यथा माम प्रपद्यन्ते, है ना. जैसे जैसी जैसी हमारी इच्छा है उसमें कितना मिक्सचर है, 10% भगवान का है, 80% मेरा स्वार्थ का है, तो वैसा लाभ मिलेगा आपको, वो नुकसान भी वैसे होगा. इज दैट राइट प्रभु जी? द डिफिकल्टी इज आवर माइंड, यू नो, अपना मन के अंदर क्या विकल्प है हमारे, क्या हमारे कलमश है, ये समझना बहुत मुश्किल है. हमको भी कभी कभी लगता है कि मेरा मन में तो इतना शुद्ध इच्छा है, मैंने तो केवल भगवान के लिए किया था. लेकिन जब उसका परिणाम नहीं निकलता है हमारे इच्छे जैसा, तो तिलमिला उठते हैं हम लोग, ऐसे कांपते हैं गुस्से से, क्यों नहीं हुआ हमारे ऐसे. वो उसका परिणाम है. अगर भगवान के लिए किया था तो अपयश भी प्राप्त हो जाएगा, तो भी आपको बोलेगा थैंक यू सर. अगर वो आप बोल पाते हो तो हम कह सकते हैं कि भगवान के लिए किया था आपने. अगर वो युद्ध करने के बाद में अर्जुन हार भी जाते महाभारत का युद्ध, तभी वो कहते हैं थैंक यू माई लॉर्ड, वैसे आपकी क्या, मैंने तो युद्ध किया. अर्जुन की स्थिति है, वैसे हमारी स्थिति है तो अच्छी बात है. हाँ, एक्सचेंज ऐसा है कि वो उसके बाद में उनको सुमरत देते हैं. हाँ, नहीं नहीं नहीं, जब भी वो उसमें स्नान करते ना तो वो तीनों को बहुत सुंदर शरीर प्राप्त होता है. लेकिन अश्विनी कुमार पहले से युवावस्था में ही थे, उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ उसमें से, वो तो वैसे ही थे जैसे, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया. लेकिन ये च्यवन मुनि बहुत बुढ़े थे, वो जवान हो गए. और उसके बाद में ये यज्ञ करते हैं, सोम यज्ञ करते हैं, ये दोबारा आते हैं शर्यति मनु और सोम यज्ञ करते हैं. सोम यज्ञ के अंत में अश्विनी कुमार को सोमरस देते हैं और वो सोमरस पीकर फिर अगला भोग वो करते हैं देवता लोक में जाके. वो एक्सचेंज है, वो वेट करते हैं आराम से, बाद में सोम यज्ञ के बाद में उनको सोमरस मिलता है. फिर इंद्र को बहुत गुस्सा आता है और इंद्र वो वज्र जो है वो च्यवन मुनि को मारने का प्रयास करते हैं, तो वज्र का मारने के पहले ही ये इंद्र जो है वो इंद्र का हाथ पैरालाइज कर देते हैं. च्यवन मुनि एक श्लोक बोलकर, मंत्र बोलकर उसके हाथ को एकदम बलहीन कर देते हैं, तो वज्र को मार ही नहीं सकते. फिर इंद्र जो बोलते हैं ठीक है माफ कर देना, कोई बात नहीं. और फिर वो देवताओं को, अश्विनी कुमार को बोले चलो इनको भी सोमरस दिया क्या करो. सब हो गए, आगे पीछे ऊपर नीचे सब भोग ही भोग है और कुछ नहीं है. हाँ, है ना, बिल्कुल है. एक ही उसका सेंटेंस है कि अगर अपनी पत्नी पतिव्रता हमको होनी चाहिए तो हमको भी बहुत चेष्ट होना चाहिए. अब जैसे हम होंगे वैसे हमारी पत्नी होगी. अगर हम लोग, हमारा मन सब जगह गांव पर भटक रहा है सब स्त्रियों की ओर, तो राम जी का उदाहरण सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है. हमारे गुरु महाराज जो है वो हर शादी में राम और सीता का उदाहरण देते हैं. सबसे पहले राम का उदाहरण देते हैं, बाद में सीता का उदाहरण देते हैं. बिकॉज हर आदमी को लगता है कि मेरी पत्नी जो है ना वो सीता जैसी होनी चाहिए. तो महाराज पहले बताते हैं सबसे पहले कि आप पहले राम बनने का प्रयास करो, राम जैसा बनने का प्रयास करो, फिर आप पत्नी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो सीता जैसी बने. फर्स्ट यू बिकम अडॉप्ट द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड राम, डोंट ट्राई टू बिकम लॉर्ड राम, ट्राई टू अडॉप्ट द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड राम. है, सब शास्त्र में है, लेकिन हम लोग कहाँ फोकस करते हैं ना, हम लोग फोकस करते हैं उसी पर जो हमको, हमारे लिए अनुकूल है. हमको सब एज इट इज देखना चाहिए, जैसे वास्तव में रखा है वैसे देखना चाहिए, तभी वो अपने को वो अनुभूति देगा जो उसके लिए हमको जरूरी है, वो अनुभूति मिलेगी. जब अपने स्वार्थ को लेकर उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वैसे अनुभूतियां मिलेंगी जो परफेक्ट नहीं होंगी. ठीक है, जयंतराज श्रीमद भागवतम की जय हो. जय श्री राम.